नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू ही दाता विश्व
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा कि सृष्टि परमेश्वर के द्वारा है और उसने हम मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम उसकी ओर अपने आप से निर्णय लेकर के आ जाएं, क्योंकि उसने हम सबों को अपनी महिमा के लिए ही बनाया है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच में आप दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं जो सदैव हम पर दया करते हैं। आपने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम आपकी निकटता में रहकर आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें। आज हम फिर से जब आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुने अपने जीवन में समझ करके ग्रहण कर सकें। और विशेष प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो आज के वचन को पहली बार सुन रहे हैं, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। जो बीमार अवस्था में हैं, जो निराश हैं, जो किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। आज फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम नीति वचन उसके 17 अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 17 अध्याय उसका एक पद। लिखा हुआ है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। इस पद का विचार भी नीति वचन 15 अध्याय उसके 17 पद के समानांतर ही है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए पशु का मांस खाने से उत्तम है। इस पद का अंतिम भाग धार्मिक कार्यों का चित्रण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां परमेश्वर की सहभागिता है। कलीसिया में अनेक सभाओं का आयोजन होता है, अनेक विभाग भी होते हैं, अनेक गतिविधियां भी हैं, परंतु उसके कारण बहुत अव्यवस्था और निराशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहां मुझे एलिया का ध्यान आता है। अहाब और इजेबेल के दरबार में गतिविधियों की कमी नहीं थी, वहां धार्मिक काम भी होते थे, परंतु ईश्वर भक्ति का नाम नहीं था। उसी बीच वहां एलियाह आता है और कहता है कि जब तक परमेश्वर न कहे वर्षा नहीं होगी, और वहां से चला गया। वहां से निकलकर वह कहां गया या कहां चला गया? वह करीत के नाले के पास चला गया। वहां उसने बहुत समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताया। परमेश्वर उसे वहां एकांतवास में प्रशिक्षण दे रहा था। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उत्तम है। महान धार्मिक कार्य का एक और उदाहरण मूसा है। परमेश्वर मूसा को फिरौन के राज महल से निकालकर निर्जन स्थान में ले गया और वहां उसे प्रशिक्षण दिया। मूसा और एलियाह दोनों ने चैन के साथ अर्थात एकांतवास में सूखा टुकड़ा खाया था। कभी कभी अकेला रहना अच्छा होता है। हम अनेक सभाओं में अति व्यस्त रहते हैं, परंतु कभी कभी हमें अपनी गतिविधियों में कटौती करके अकेले में समय बिताने की आवश्यकता पड़ती है। अनेक सभाओं के बाद हम घर लौटते हैं, तब हम कहीं जाते तो नहीं हैं, परंतु अपने ही घर के बाहर एकांत में समय बिताते हैं। यह हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा समय बिताएं। हमारी आत्मिक ताजगी के लिए यह बहुत अच्छा है। नीति वचन 17 उसके 2 पद में लिखा है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। निष्ठावान सेवक अनिष्ट पुत्र से अच्छा है। एक सेवक जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं उसको घर में रखना ऐसे पुत्र से अच्छा है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। मुझे अब्राहम और उसके विश्वास योग्य सेवक एलियाजर के बारे में स्मरण आता है, तो दूसरी ओर दाऊद और उसके पुत्र अबशालोम का। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि उसके पास संतान नहीं है। यदि कोई उसका वारिस है तो केवल एलियाजर है। वह चाहता था कि उसका अपना पुत्र हो तो अच्छा होगा। परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और उसे पुत्र दिया। अब यदि पुत्र अबशालोम की नाई उदंड और अवज्ञाकारी हो तो उससे अच्छा होगा कि एक विश्वास योग्य सेवक घर में हो। दाऊद के पास कई विश्वास योग्य मनुष्य थे जो सदा उसके साथ रहते थे। नीति वचन 17 के 3 पद में लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। जी हाँ, सोना और चांदी जब खदान से निकलता है तब वह परिशुद्ध नहीं होता, उसे भट्टी में पिघलाकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने सेवकों को शुद्ध करता है जिससे कि वह उनमें विकास लाए। वह अपने उपयोग के लिए उत्तम पुत्र और पुत्री तैयार करता है। हम परमेश्वर के लिए सोना और चांदी से अधिक मूल्यवान हैं। अतः जब परमेश्वर हमें परखे तो हमें निराश नहीं होना है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह सब इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जी हाँ, परमेश्वर इसी रीति से काम करता है। अय्यूब को कष्टों की आग से निकालने में परमेश्वर का अपना उद्देश्य था। पौलुस की देह में कांटा चुभाने में भी उसका एक उद्देश्य था। कलीसिया में सताव के समय विश्वासियों के शहीद होने में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। सताव के कारण कलीसिया का रूप निखरा था और उस युग के जैसी पवित्रता कभी नहीं रही। मेरे विचार में आज हम विश्वासियों की समस्या समृद्धि है। इसराइल के साथ भी यही समस्या थी। मूसा व्यवस्था विवरण के पुस्तक 32 अध्याय उसके 15 पद में इसका उल्लेख करता है, परंतु यशुरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हृष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। आज अनेक मोटे भक्त जन हैं, उनके पास सब कुछ है, परंतु वे फिर भी शिकायत करते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, आलोचना करते हैं। वे मसीह के काम में किसी प्रकार सहायक नहीं है। अतः परमेश्वर उन्हें आग में तपाए, यह अति आवश्यक है कि उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाए। मेरे प्रियो, मुझे एक महिला का पत्र मिला जो प्रार्थना करती थी कि वह यीशु को और अधिक अच्छी तरह जाने और उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़े। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे कैंसर हो गया। अब कोई कहेगा, यह तो परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी कभी ऐसा ही करता है। इस समय आप एक ऐसे प्रचारक की बात सुन रहे हैं जो इसका अनुभव भी रखता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बीमारी क्यों दिया। मुझे और मेरी पत्नी को किसी ने लिखा कि परमेश्वर ने मुझे बीमारी इसलिए दिया कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम अज्ञानी हैं और हम ऐसे ही हैं, इसलिए हो सकता है कि यह सच हो, परंतु परमेश्वर में उस पत्र के भेजने वाले के समान छोटी मानसिकता नहीं है। उसने यह इसलिए नहीं किया था कि वह हमसे घृणा करता है या उसकी मानसिकता गिरी हुई है। परमेश्वर ने प्रेम के कारण ऐसा किया था, और आप नहीं जानते कि इस कारण वह हमारे लिए कितना मूल्यवान हो गया है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के जीवन में कष्ट आए हैं। आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप उसके करीब आइए। वह आपको निखारना चाहता है। आप उससे प्रेम कीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। नीति वचन 17 के 6 पद में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मेरे विचार में आप सब इस पद को सराहते हैं। यह पद वृद्धों के लिए है। बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बच्चे अपने पिता की ओर निहारते हैं, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते होते हैं। यह नीति वचन अति सत्य है। एक वृद्ध पुरुष दूसरे वृद्ध से कहता है, क्या मैंने कभी आपको अपने नाती पोतों के बारे में बताया है, उसके चित्र दिखाए हैं? दूसरा वृद्ध पुरुष कहता है, नहीं, परंतु मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूंगा। यदि मुझे पता होता कि नाती पोते कैसे मनभावन होते हैं तो मैं अपनी संतान से पूर्व उन्हें प्राप्त करना चाहता। वे आनंद और घमंड का कारण होते हैं। वे परिवारों को जोड़ते हैं। बच्चा पिता की ओर निहारता है, परंतु नाना दादा नाती पोतों को देखता है। उसके अनुराग का केंद्र वे ही हैं। नीति वचन 17 के 10 पद में लिखा है, एक घुड़ के समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, बेचारा दुआ बंदगी करने वाला कैसा कष्ट उठा रहा है। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट देकर सुधारता है। परमेश्वर उन्हें कुछ सिखा रहा है क्योंकि वे समझने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य घुड़की को सुनता है, मूर्ख घुड़की को नहीं सुनता है। परमेश्वर यदि उसे 100 कोड़े मारे तो भी वह नहीं समझेगा, उसे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे मित्रों, जब आप किसी अभक्त मनुष्य को फूलता फलता देखते हैं तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह ऐसा मूर्ख है कि परमेश्वर उसके साथ कुछ भी करे वह बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु ने एक किसान का दृष्टांत सुनाया था। वह एक समृद्धशील किसान था। वह अपना व्यापार बढ़ा रहा था। उसने पुराने खत्ते तोड़कर नए खत्ते बनवाए। नए खत्ते बनवाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु वह मूर्ख था। मैं उसे मूर्ख नहीं कह रहा हूं, यीशु ने कहा था। वह मूर्ख इसलिए था कि उसने अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ अपने ही शारीरिक जीवन के लिए कर रहा था। परमेश्वर की घुड़की उस पर प्रभाव नहीं डालती थी। मेरे मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग इस संसार में पाए जाते हैं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग हैं जो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और परिवार और जमीन जायदाद की चिंता कर रहे हैं, परंतु उस जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसका लेखा आपको भी देना पड़ेगा। महाक्लेश के समय संसार ऐसी घोर पीड़ा और कष्टों में होगा कि मनुष्य अपनी जीभ काटेगा, परंतु क्या वे परमेश्वर के पास आएंगे? जी नहीं। मूर्ख को 100 कोड़े पड़े तो भी उसे समझ नहीं आती है। मैं फिर कहता हूं, अनुशासन आपकी संतान के लिए है, अपराधी के लिए नहीं, उसके लिए दंड है। नीति वचन 17 के 16 पद में लिखा हुआ है, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मैं धनवानों के अनेक बच्चों को जानता हूं जिनमें कॉलेज जाने की इच्छा नहीं है। उन्हें कॉलेज में होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वे परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, परंतु इसलिए कि उनका मन ही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं कि सबको कॉलेज जाना चाहिए। कॉलेज प्रवेश का मार्ग तो सबके लिए होना चाहिए, परंतु उन्हें विवश नहीं करना चाहिए। अनेक युवाओं में कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती है। यहां धनवान और गरीब की बात नहीं है, कृपया आप इसे गलत न समझें। यहां मुख्य बात है लालसा की। मेरे विचार में प्रत्येक गरीब बच्चों को कॉलेज शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त होना है, यदि उसमें लालसा है। दूसरी ओर कॉलेज में अनेक धनवान युवक हैं जिन्हें वास्तव में वहां नहीं होना चाहिए। मैं एक गरीब बालक था और मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मेरे पिता ने मुझे कॉलेज पढ़ने का मौका दिया। मैं एक गरीब बालक होने के नाते कॉलेज पढ़ सका और इसलिए मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्रों, कॉलेज का द्वार खोलने के लिए परमेश्वर का आपको आभारी होना है यदि आपके बच्चे या आप उसमें पढ़ रहे हैं। नीति वचन 17 उसके 17 पद में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। यह पद हमें दाऊद के घनिष्ठ मित्र योनातान का स्मरण कराती है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। जी हाँ, योनातान दाऊद से तब प्रेम रखता था जब वह उसके पिता के लिए राजमहल में वीणा बजाता था, और वह दाऊद से उस समय भी उतना ही प्रेम रखता था जब वह उसके पिता से जान बचाकर गुफाओं में छिपा हुआ था। योनातान राजा शाऊल का पुत्र होने के कारण सिंहासन का वारिस था, परंतु वह दाऊद से बहुत प्रेम रखता था। ऐसा मित्र मिलना वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है, जो आपसे हर परिस्थिति में प्रेम न रखे वह आपका मित्र नहीं है। कोई कहे कि वह आपसे प्रेम रखता है और आपका मित्र बन जाता है, परंतु बुरे समय में वह आपसे प्रेम नहीं रखता तो बड़ी निराशा होती है। वह यहूदा इस्करियोती है या अबशालोम है। मेरे मित्रों, आज बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आज जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो वे मित्र एक दूसरे को धोखा देने पर तुले हुए हैं। आज आपको देखना है कि आपका मित्र कैसा है। नीति वचन 17 उसके 21 पद में लिखा है, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। अनेक नीति वचनों में यह कहा गया है, एक अच्छे पुत्र का पिता सदा आनंदित रहता है, वह सबसे अपने पुत्र की चर्चा करता है। दूसरी ओर यदि कोई पुत्र अच्छा नहीं है तो उसका पिता हर समय शांत दिखाई देता है, उसके विषय में कोई कुछ भी नहीं सुनता है। नीति वचन 17 के 22 पद में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आज अनेकों का हृदय दुखी है, उनमें आनंद की कमी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन खुश रहे, वह चाहता है कि हमारा समय अच्छी रीति से बीते, आराधनालय में हमारी उपस्थिति मनोविनोद का समय हो। हमें हंसना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हम आराधनालयों में अकड़े हुए और अभिमान से ग्रस्त होते हैं, हम खुश नहीं हो पाते हैं, सिर्फ हम जाते हैं और वापस आ जाते हैं। नीति वचन 17 के 23 पद में लिखा है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। रिश्वत देने के अनेक तरीके हैं। आज संसार में कदम कदम पर रिश्वत लेना देना होता है, परंतु ध्यान दे कि परमेश्वर इन सारी बातों को देखता है। नीति वचन 17 के 28 पद में लिखा है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। मेरे मित्रों, इस नीति वचन में हास्य है। लिखा है कि इससे मुंह बंद हो जाता है। एक किसान का पुत्र बहुत सीधा था। पिता एक दिन उसे अपनी मंडी में ले गया। वे खेत से सेव लेकर बेचने के लिए आए थे। पिता ने पुत्र से कहा कि वह मुंह बंद रखे, अन्यथा लोग जान जाएंगे कि वह मूर्ख है, और वह मंडी में चला गया। उसी बीच एक व्यक्ति वहां आया और उस लड़के से पूछा, सेव कैसे दिए हैं? वह लड़का चुप रहा। उसने 2-3 बार सेव का मूल्य पूछा, परंतु वह लड़का चुप रहा। उस व्यक्ति ने कहा, तू मूर्ख के समान क्यों बैठा है? और वह चला गया। पिता जब लौटा तो पुत्र से पूछा, सब ठीक तो है? लड़के ने कहा, मैंने तो अपना मुंह नहीं खोला, परंतु वे जान गए कि मैं मूर्ख हूं। मेरे मित्रों, कई बार हम भी इसी प्रकार का काम करते हैं। जहां पर मुंह खोलना है नहीं खोलते हैं, जहां नहीं खोलना है वहां खोलते हैं, और इसी कारण लोग हमें पहचान लेते हैं कि हम मूर्ख हैं, संसार में और परमेश्वर की दृष्टि में भी। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जाके मिले कितनी।